एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान, और आज हम एक ऐसे विचारक के काम में गोता लगा रहे हैं जिन्होंने वाकई सोचने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। जी हाँ, आज बात होगी रेने डेकार्त की और उनकी दो बहुत ही प्रभावशाली किताबों की, विधि पर प्रवचन और प्रथम दर्शन पर ध्यान।
हाँ, ये नाम सुनने में शायद थोड़े भारी लगे, पर इनके पीछे जो विचार हैं वो आज भी आप देखिए कितने प्रासंगिक हैं।
सोचिए ना, आजकल इतनी जानकारी हर तरफ से आ रही है, सच क्या है क्या नहीं, हम यकीन किस चीज पर करें।
बिल्कुल, यही सवाल डेकार्त ने सदियों पहले उठाया था कि भाई मैं निश्चित रूप से क्या जान सकता हूँ। उनकी ये खोज सिर्फ किताबी नहीं थी, ये तो ज्ञान की एक ऐसी ठोस नींव तलाशने की कोशिश थी जिस पर शक की कोई गुंजाइश ही ना हो।
सही कहा।
और उनका जो तरीका था सोचने का, वो ढांचा, वो आज भी हमें इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में शायद रास्ता दिखा सकता है।
तो कौन थे ये रेने डेकार्त? 1596 में फ्रांस में जन्मे डेकार्त सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, है ना, गणित और विज्ञान में भी उनका दखल कमाल का था।
हाँ, जबरदस्त। उन्हें अक्सर आधुनिक पश्चिमी दर्शन का पिता कहते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
और उनकी खासियत ये थी कि वो लीक से हटकर सोचते थे। गणित में जो उनकी पकड़ थी, खासकर वो एनालिटिकल ज्योमेट्री का आविष्कार, उससे उन्हें तार्किक और व्यवस्थित सोच की ताकत का अंदाजा हो गया था।
हाँ, और उन्हें उस जमाने की पढ़ाई से, खासकर दर्शन से, थोड़ी निराशा थी। बहुत मतभेद, अनिश्चितता दिखती थी उन्हें।
सही, वो सिर्फ पुरानी बातों पर बहस करके संतुष्ट नहीं थे। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, ज्ञान की पूरी इमारत को तर्क की बुनियाद पर एकदम नए सिरे से खड़ा करना। ये वो दौर था जब गैलीलियो जैसे लोग विज्ञान में क्रांति ला रहे थे। डेकार्त चाहते थे कि दर्शन में भी वैसी ही निश्चितता आए जैसी गणित में होती है।
अच्छा,
उनका रवैया कुछ कुछ एक इंजीनियर जैसा था, आप कह सकते हैं।
अच्छा,
कैसे?
यस,
कि भाई अगर पुरानी नींव कमजोर है तो पूरी इमारत गिरा दो, और फिर नई एकदम मजबूत नींव पर बनाओ।
अच्छा, तो अगर इन दोनों किताबों प्रवचन और ध्यान के मूल मकसद पर आए तो वो यही था।
हाँ बिल्कुल, ज्ञान की ऐसी पक्की जमीन खोजना जिस पर संदेह टिक ही ना सके। और इसके लिए उनका हथियार क्या था? शक, व्यवस्थित शक।
सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, शक को हथियार बनाना।
हाँ, लेकिन डेकार्त का शक कोई निराशावादी शक नहीं था। ये ऐसा था जैसे जैसे किसी इमारत की नींव को ठोक बजाकर देखना कि वो कितनी मजबूत है।
अच्छा,
उन्होंने कहा, चलो हर उस चीज पर शक करते हैं जिस पर जरा सा भी शक किया जा सके। हमारी इंद्रियां, अरे वो तो धोखा देती हैं।
हाँ, देती तो है।
सपने कभी कभी बिल्कुल असली लगते हैं, यहां तक कि गणित, जैसे 2 + 2 = 4, क्या पता कोई शैतानी ताकत हमें इसमें भी धोखा दे रही हो।
बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया।
बिल्कुल रेडिकल सोच थी, सब कुछ खारिज कर देना। लेकिन इसी शक की राख से उन्होंने वो पहली चिंगारी खोजी, वो मशहूर वाक्य कॉगिटो एर्गो सम।
मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं।
हाँ, उनका तर्क था कि भाई अगर मैं शक कर रहा हूं तो भी ये तो पक्का है ना कि कोई है जो शक कर रहा है। मेरा सोचना ही मेरे होने का सबूत है। ये वो पहली अटल सच्चाई थी जिस पर कोई शक नहीं किया जा सकता था।
वाओ, ज्ञान की गारंटी कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर मिल गई। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी रहा होगा।
जबरदस्त। और इसी एक निश्चित बिंदु से उन्होंने धीरे धीरे बाकी ज्ञान को फिर से बनाने की कोशिश की। ईश्वर के अस्तित्व को साबित करना, अपने स्पष्ट विचारों पर भरोसा करना, और यहां तक कि मन और शरीर के रिश्ते को समझना।
तो प्रवचन और ध्यान में यही सब है।
हाँ, प्रवचन उनकी इस यात्रा की कहानी ज्यादा आत्मकथात्मक, पर्सनल अंदाज में कहता है, जबकि ध्यान उसी यात्रा का ज्यादा सघन और व्यवस्थित तार्किक विश्लेषण है।
चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। पहले विधि पर प्रवचन को देखते हैं। ये किताब एक तरह से डेकार्त की बौद्धिक आत्मकथा जैसी है, आपने कहा।
हाँ बिल्कुल, इसके शुरुआती हिस्सों में डेकार्त बताते हैं कि कैसे वो अपनी पढ़ाई लिखाई से थोड़े निराश थे। हर विषय में इतने मतभेद, इतनी अनिश्चितता,
सिवाय गणित के।
हाँ सिर्फ गणित में उन्हें वो स्पष्टता और निश्चितता मिलती थी क्योंकि वहां तर्क और सबूत थे। तो उन्होंने फैसला किया कि वो किताबी दुनिया छोड़कर खुद अपने अंदर और दुनिया के अनुभवों से, जीवन की महान पुस्तक से सीखेंगे।
अच्छा।
और इसी खोज में जर्मनी में कहीं अकेले बैठकर उन्होंने अपनी वो प्रसिद्ध विधि के 4 नियम बनाए। ये नियम आज भी आप देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कमाल के हैं।
हाँ, कौन से हैं वो नियम?
पहला, किसी भी चीज को सच तभी मानो जब वो इतनी साफ और स्पष्ट हो कि शक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। मतलब जल्दबाजी मत करो, अपने पूर्वाग्रहों से बचो, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा, किसी भी मुश्किल को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में बांट लो, जैसे किसी बड़ी पहेली के टुकड़े अलग अलग कर लेना।
ये तो लॉजिकल है। तीसरा?
तीसरा, अपनी सोच को एक क्रम में रखो, सबसे आसान और जानी हुई चीजों से शुरू करो और फिर धीरे धीरे मुश्किल और जटिल चीजों की तरफ बढ़ो, एक एक कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी।
ओके, और चौथा?
और चौथा, हमेशा पूरी तस्वीर देखो, हर हिस्से की जांच करो, कुछ छूट ना जाए। मतलब पूरी तरह से समीक्षा करो, पक्का कर लो कि तुमने हर पहलू पर गौर किया है।
अच्छा।
वो एक उपमा भी देते हैं कि जैसे एक ही आर्किटेक्ट का बनाया शहर ज्यादा सुंदर और व्यवस्थित होता है अलग अलग लोगों के बनाए टुकड़ों से, वैसे ही एक ही विधि से पाया गया ज्ञान ज्यादा भरोसेमंद होगा।
दिलचस्प, लेकिन ज्ञान की खोज में तो समय लगता है और रोजमर्रा की जिंदगी तो चलती रहती है, उसका क्या?
बिल्कुल सही सवाल। इसीलिए उन्होंने एक प्रोविजनल मॉरल कोड यानी एक तरह से काम चलाओ नैतिक नियम भी बनाए। जब तक पक्के जवाब ना मिले तब तक कैसे जिए?
अच्छा, क्या थे वो नियम?
जैसे पहला, जहां रह रहे हो वहां के कानून और रिवाज मानो। दूसरा, अपने फैसलों पर दृढ़ रहो, भले ही वो सबसे अच्छे ना हो पर कम से कम किसी दिशा में तो चलो। जैसे जंगल में खो जाने पर एक ही दिशा में चलते रहना बेहतर है।
हाँ, समझी।
और तीसरा, किस्मत को कोसने की बजाय अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, जो चीजें हमारे बस में नहीं उनके पीछे परेशान ना हो। काफी प्रैक्टिकल सोचती है ना?
हाँ बिल्कुल। और फिर आता है वो हिस्सा जहाँ वो अपनी शक वाली विधि का इस्तेमाल करके कॉग्निटो एर्गो सोम तक पहुँचते हैं।
हाँ, यही वो पहली बार ईश्वर के अस्तित्व का तर्क भी देते हैं कि मेरे जैसे अधूरे दिमाग में एक पूर्ण सत्ता का विचार कहाँ से आया, जरूर किसी पूर्ण सत्ता ने ही डाला होगा। इस आइडिया को वो ध्यान में और पुख्ता करते हैं।
हाँ, तो अब प्रथम दर्शन पर ध्यान की बात करते हैं। ये ज्यादा गहरी मेडिटेटिव किताब है, आपने कहा।
जी,
6 ध्यान है इसमें।
जी हाँ, 6 मेडिटेशंस। और पहला ध्यान तो बस शक ही शक है, शक की इंतहा,
मतलब प्रवचन से भी ज्यादा।
हाँ, यहाँ डेकार्त शक को और गहरा करते हैं। हमारी इंद्रियां धोखा देती हैं। वो पानी में डूबी छड़ी टेढ़ी दिखने वाला उदाहरण याद है?
हाँ हाँ
हम कभी पक्के तौर पर नहीं जान सकते कि हम जाग रहे हैं या सपना देख रहे हैं। हो सकता है ये सब एक लंबा सपना हो।
अरे बाप रे।
और फिर वो दुष्ट दानव वाली कल्पना, क्या बता कोई बहुत शक्तिशाली शैतानी ताकत है जो हमें हर चीज में धोखा दे रही है, यहाँ तक के 2+3=5 जैसी सीधी साधी बातों में भी।
तो इसका मकसद क्या था, डराना?
नहीं नहीं, इसका मकसद था दिमाग को हर पुरानी धारणा, हर पूर्वाग्रह से पूरी तरह खाली कर देना, एक क्लीन स्लेट बनाना।
अच्छा,
ताकि नई पक्की नींव रखी जा सके।
बिल्कुल।
और इसी शून्य में से दूसरे ध्यान में वो निश्चितता का पहला कण खोजते हैं। मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। जैसा हमने पहले कहा, शक करने के लिए भी मेरा होना जरूरी है। फिर वो पूछते हैं, मैं क्या हूं? और जवाब मिलता है, एक सोचने वाली चीज, रेस कोगिटांस।
और यही वो मोम वाला उदाहरण आता है ना?
हाँ, वो मोम का उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। एक मोमबत्ती लो, उसकी एक खास गंध है, रंग है, आकार है, आवाज है जब ठोकते हैं।
सही।
अब उसे आग के पास लाओ, सब बदल जाता है। गंध चली जाती है, रंग बदल जाता है, आकार पिघल जाता है, आवाज नहीं आती, लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि ये वही मोम है।
हाँ, जानते तो हैं।
तो ये ज्ञान हमें इंद्रियों से मिला या दिमाग से? डेकार्त कहते हैं, दिमाग से। हमारी बुद्धि ही मोम के असली सार को समझती है, न कि हमारी आंखें या नाक। इससे वो साबित करते हैं कि हम अपने मन को शरीर से बेहतर और ज्यादा सीधे तौर पर जानते हैं।
अच्छा, ये बात है, मन पहले आता है।
हाँ, अब तीसरे ध्यान में वो ईश्वर के अस्तित्व के लिए अपना मुख्य तर्क देते हैं। इसे कभी कभी ट्रेडमार्क आर्ग्यूमेंट कहते हैं।
ट्रेडमार्क? वो कैसे?
उनका कहना है कि मेरे मन में ईश्वर का विचार है, यानी एक अनंत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, पूर्ण सत्ता का विचार। अब मैं खुद तो सीमित और अपूर्ण हूं, तो ये इतना महान विचार मुझ में कहां से आया? इसका कारण मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और पूर्ण होना चाहिए। तो उनका तर्क है कि ईश्वर ने ही ये विचार मेरे अंदर अपनी छाप या ट्रेडमार्क की तरह डाला है।
ओके।
और क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, वो धोखेबाज नहीं हो सकता। ये भरोसा आगे के ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है उनके सिस्टम में।
लेकिन अगर ईश्वर धोखेबाज नहीं है तो हम गलतियां क्यों करते हैं?
ये सवाल तो उठेगा ही।
बिल्कुल।
और यही सवाल चौथे ध्यान में उठता है। डेकार्त का जवाब दिलचस्प है। वो कहते हैं, हमारी समझने की शक्ति यानी बुद्धि सीमित है, पर हमारी चुनने की शक्ति यानी इच्छा वो असीम है।
अच्छा।
तो गलती तब होती है जब हमारी असीम इच्छा उन चीजों पर फैसला सुना देती है जिन्हें हमारी सीमित बुद्धि ने अभी पूरी तरह स्पष्ट रूप से समझा नहीं है। मतलब गलती हमारी जल्दबाजी या गलत चुनाव है, ईश्वर की बनावट में खोट नहीं।
तो उपाय क्या है?
उपाय, सिर्फ उन्हीं बातों को मानो, उन्हीं पर अपनी सहमति दो जो तुम्हारे लिए एकदम स्पष्ट और सुस्पष्ट हो। अपनी इच्छा को बुद्धि के दायरे में रखो।
ठीक है, अब पांचवा ध्यान।
पांचवें ध्यान में वो ज्यामिति जैसी चीजों के सार या एसेंस पर बात करते हैं। जैसे त्रिभुज का सार यही है कि उसके तीन कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, चाहे असल दुनिया में कोई परफेक्ट त्रिभुज हो या ना हो। ये सच्चाई दिमाग से पता चलती है। और फिर वो ईश्वर के अस्तित्व का एक और तर्क देते हैं जिसे ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये थोड़ा पेचीदा है।
कोशिश करते हैं समझने की।
उनका कहना है कि ईश्वर की परिभाषा ही है परम पूर्ण सत्ता, हर तरह से परफेक्ट, और अस्तित्व यानी होना अपने आप में एक पूर्णता है। तो जिस तरह त्रिभुज के सार में तीन कोण होना शामिल है, उसी तरह परम पूर्ण सत्ता के सार में उसका अस्तित्व में होना जरूरी है। बिना अस्तित्व के वो परम पूर्ण कैसे होगी?
अच्छा, मतलब ईश्वर की परिभाषा में ही उसका होना शामिल है।
हाँ, कुछ ऐसा। ये तर्क काफी विवादास्पद रहा है, पर डेकार्त के लिए महत्वपूर्ण था।
और आखिरकार छठा ध्यान, इसमें क्या है?
छठे ध्यान में वो बाहरी भौतिक दुनिया के अस्तित्व को साबित करते हैं। तर्क यह है कि चूंकि ईश्वर धोखेबाज नहीं है, वो हमें हमारी इंद्रियों से मिलने वाली उन सूचनाओं के बारे में लगातार धोखा नहीं देगा जो स्पष्ट और सुस्पष्ट हैं, खासकर चीजों के गणितीय गुणों जैसे लंबाई, चौड़ाई, गति के बारे में।
मतलब ये टेबल, ये कमरा, ये सब सचमुच मौजूद है।
हाँ, डेकार्त के अनुसार खासकर इनके वो गुण जिन्हें मापा जा सकता है वो जरूर मौजूद हैं। और यही वो अपना सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादास्पद विचार भी रखते हैं, मन शरीर द्वैतवाद, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म।
हाँ, ये तो सुना है, मन अलग शरीर अलग।
बिल्कुल। मन एक सोचने वाली गैर भौतिक चीज जिसका कोई आकार या जगह नहीं, और शरीर एक फैली हुई जगह घेरने वाली ना सोचने वाली भौतिक चीज है। ये दोनों एकदम अलग तरह के पदार्थ हैं, पर इंसानों में ये किसी तरह बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल बन गया बाद में।
उफ, ये तो विचारों का पूरा एक समंदर है। अगर हमें इसमें से कुछ मुख्य मोती, मतलब की टेकअवेज चुनने हो, तो क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहला तो यही पद्धतिगत संदेह है।
हाँ बिल्कुल। शक करना, सवाल पूछना सिर्फ नुक्स निकालने के लिए नहीं, बल्कि सच तक पहुंचने के एक टूल की तरह। जैसे सोना खरीदने से पहले उसे कसौटी पर कसते हैं ना, वैसे ही।
सही। दूसरा क्या होगा?
तर्क की प्रधानता। हाँ, प्राइमेसी ऑफ रीजन। डेकार्त ने सिखाया कि असली ज्ञान इंद्रियों के धोखे से नहीं, बल्कि हमारे सोचने, तर्क करने की क्षमता से आता है। वो मोम का उदाहरण याद है ना, चीजों की गहराई तक बुद्धि ही पहुंचती है।
हाँ, हम अक्सर पहली नजर में राय बना लेते हैं। डेकार्त कहते हैं, रुको, सोचो, तर्क करो। जैसे आजकल कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है तो तुरंत यकीन करने से पहले सोचना चाहिए।
बिल्कुल। तीसरा, वो मन शरीर का द्वैतवाद। मन अलग शरीर अलग, इस विचार ने सदियों तक बहस छेड़ी है कि हम क्या हैं, सिर्फ शरीर या शरीर में रहने वाली कोई चीज।
हालांकि आज का विज्ञान, न्यूरोसाइंस वगैरह इस पर सवाल उठाता है, पर इसने हमें अपनी चेतना के बारे में, अपने होने के बारे में सोचने पर मजबूर तो किया।
जरूर। भारत में भी मन और शरीर के रिश्ते पर बहुत गहरी सोच रही है, हालांकि शायद इतने तीखे अलगाव के साथ नहीं जितना डेकार्त ने किया।
चौथा क्या है?
चौथा, डेकार्त की प्रणाली में ईश्वर की भूमिका। वो सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ज्ञान की गारंटी देने वाले हैं। वो एक तरह से पुल का काम करते हैं हमारे अपनी सोच और बाहरी दुनिया के बीच। ये दिखाता है कि कैसे किसी निश्चित आधार की तलाश हमें विश्वास प्रणालियों की ओर ले जा सकती है।
और पांचवा,
सार्वभौमिक ज्ञान की संभावना। डेकार्त मानते थे कि तर्क करने की क्षमता, वो कॉमन सेंस, सब में है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो हर कोई बुनियादी सच्चाइयों तक पहुंच सकता है। ज्ञान किसी खास वर्ग या गुरु की जागीर नहीं, ये एक तरह से ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का विचार था।
डेकार्त की बातें सिर्फ गहरी ही नहीं है बल्कि बहुत यादगार भी हैं। उनके कुछ विचार तो जैसे मुहावरे बन गए।
हाँ बिल्कुल, सबसे मशहूर तो वही है, कॉगिटो एर्गो सुम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये आधुनिक दर्शन का आप कह सकते हैं ग्राउंड जीरो बन गया। अपने होने का सबसे पक्का सबूत खुद अपना सोचना।
और उसका वो ज्यादा सटीक रूप भी है जो उन्होंने ध्यान में इस्तेमाल किया। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, ये हर बार जब मैं इसे कहता हूँ या मन में सोचता हूँ अनिवार्य रूप से सत्य है।
हाँ, ये दिखाता है कि ये कोई लंबा चौड़ा तर्क नहीं बल्कि एक सीधी तत्काल अनुभूति है। जिस पल सोचा उसी पल सच, कोई डाउट ही नहीं।
फिर वो बात भी बहुत अच्छी लगती है, अच्छा दिमाग होना ही काफी नहीं है, मुख्य बात यह है कि इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाए।
बिल्कुल, यानी टैलेंट से ज्यादा जरूरी है तरीका, मेथड। सही तरीके से कोई भी सोच सकता है, नतीजे पर पहुंच सकता है। ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है।
हाँ, और जब वो खुद से पूछते हैं तो फिर मैं क्या हूं, एक सोचने वाली चीज।
और फिर उसे समझाते हैं।
हाँ, कि सोचने में क्या क्या आता है, शक करना, समझना, हाँ कहना, ना कहना, चाहना, ना चाहना, कल्पना करना, महसूस करना, ये दिखाता है कि उनके लिए सोचना कितना व्यापक था। सिर्फ लॉजिक लगाना नहीं बल्कि हमारी पूरी चेतना, हमारा पूरा आंतरिक जीवन। ये सब सुनने में तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। हम आज की जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या करें?
देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे सीधा फायदा है आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना, क्रिटिकल थिंकिंग। डेकार्त की तरह शक करना सीखें।
मतलब हर बात पर शक करें?
नहीं, मतलब आंख बंद करके कुछ भी ना माने। कोई खबर आई, कोई दावा हुआ सोशल मीडिया पर, कोई विज्ञापन दिखा, एक पल रुककर पूछें, इसका सबूत क्या है? क्या इस पर शक करने की कोई वजह है? क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए मान लूं क्योंकि सब मान रहे हैं या क्योंकि यह सुनने में अच्छा लग रहा है? आजकल की फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में ये हुनर तो सोने जैसा है।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा?
दूसरा, व्यवस्थित तरीके से समस्याएं सुलझाना। डेकार्त के वो चार नियम याद हैं? स्पष्टता, विश्लेषण, क्रम और पूर्णता।
हाँ,
उन्हें किसी भी काम में रह सकते हैं। कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है, परीक्षा की तैयारी करनी है या घर की ही कोई उलझन है, पहले साफ साफ समझो कि असल प्रॉब्लम या लक्ष्य क्या है। उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ो, एक लॉजिकल क्रम में आगे बढ़ो, आसान से मुश्किल की तरफ, और आखिर में एक बार पूरा रिव्यू करो कि सब ठीक से हुआ है, कुछ छूटा तो नहीं। ये किसी भी काम को आसान और असरदार बना सकता है।
जैसे कोई बड़ी यात्रा प्लान करनी हो या कोई नया स्किल सीखना हो।
बिल्कुल। तीसरा, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। डेकार्त अंदर झांक रहे थे, अपनी सोच को देख रहे थे, हम भी ये कर सकते हैं। मेरे विचार क्या हैं, मेरे पूर्वाग्रह क्या हैं, मेरे जो पक्के विश्वास हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या ये सच में मेरे हैं या मैंने इन्हें कहीं से बस अपना लिया है। ये खुद को बेहतर समझने में बहुत मदद करता है।
और चौथा?
चौथा है बुनियादी सिद्धांतों से सोचना, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहते हैं इसे आजकल। किसी नई चीज को ईजाद करना है या किसी पुरानी समस्या का एकदम नया हल निकालना है तो डेकार्त की तरह सोच सकते हैं। ये ना सोचें कि अरे ये तो हमेशा से ऐसा ही होता है।
हाँ,
बल्कि पूछें, इस मामले की जड़ क्या है, इसके सबसे बुनियादी अटल सिद्धांत क्या हैं, और फिर वहां से बिल्कुल जीरो से कुछ नया बनाएं। कई इनोवेटिव कंपनियां, स्टार्टअप्स अक्सर यही तो करते हैं।
वाह, मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने तर्क पर भरोसा करना और एक व्यवस्थित तरीके से सोचना कितना शक्तिशाली हो सकता है। और हाँ, अपने सबसे गहरे यकीन पर भी सवाल उठाने का साहस रखना और फिर तर्क की रोशनी में उसे दोबारा परखना या बनाना, ये कमाल की बात है। ज्ञान के लिए शक करना, सवाल पूछना वाकई जरूरी है।
हाँ, और मुझे वो पूरा सफर बहुत आकर्षक लगता है। कैसे वो इतने गहरे, लगभग हर चीज को नकार देने वाले शक से शुरू करके एक एक कदम बढ़ाते हुए तर्क के सहारे एक अटल निश्चितता, मैं हूं, तक पहुंचते हैं। ये तर्क की ताकत को दिखाता है। और हाँ, वो मन शरीर वाला सवाल, वो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। यहीं पर मैं शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। डेकार्त ने मन जो सोचता है पर भौतिक नहीं और शरीर जो भौतिक है पर सोचता नहीं को इतना अलग दो बिल्कुल भिन्न चीजें बताया। आज जब हम विज्ञान से खासकर न्यूरोसाइंस से जानते हैं कि हमारा दिमाग जो शरीर का हिस्सा है हमारी सोच हमारी भावनाओं हमारी यादों को कैसे कंट्रोल करता है तो डेकार्त का ये तीखा विभाजन कितना मायने रखता है। क्या आज भी हम मन और शरीर को इतने अलग अलग खांचों में देखते हैं या ये लाइन अब बहुत धुंधली हो गई है? सोचिएगा जरूर इस पर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।